एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो शायद फिक्शन की सबसे मशहूर दुनियाओं में से एक है।
हाँ बिल्कुल, जीआरआर टॉल्किन की कालजयी रचना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स।
सही कहा, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरी सभ्यता का एहसास कराती है। अपनी भाषाएं, अपना इतिहास, अपनी पौराणिक कथाएं, कमाल है।
और टॉल्किन खुद भी मतलब सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे, भाषाविद थे।
हाँ, और प्रथम विश्व युद्ध के अनुभव और उनका कैथोलिक विश्वास, ये सब कहीं ना कहीं कहानी में झलकता है ना?
बिल्कुल, उन्होंने तो इंग्लैंड के लिए एक पूरी माइथोलॉजी, एक लेजेंडेरियम बनाने का सोचा था। और ये किताब जो तीन हिस्सों में आई, द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द टू टावर्स, द रिटर्न ऑफ द किंग, ये असल में एक ही कहानी है।
एक ही महाकाव्य। दिलचस्प बात यह है कि ये द हॉबिट के सीक्वल की तरह शुरू हुई थी, जो बच्चों के लिए थी।
हाँ, पर फिर ये बहुत जल्दी कहीं ज्यादा गहरी, गंभीर और कह सकते हैं थोड़ी अंधकारमयी भी हो गई।
कहानी का सेटअप है मध्य पृथ्वी, मिडल अर्थ, और समय है उसका तीसरा युग जो अब खत्म होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं शायर से।
हाँ शायर, हॉबिट्स का घर, एकदम शांत हरी भरी जगह। हॉबिट्स यानी छोटे कद के लोग जिन्हें बस अपने घर, अपने बाग बगीचे और अच्छे खाने पीने से मतलब।
बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है इससे लगभग बेखबर।
बिल्कुल, और यहीं रहता है हमारा मुख्य पात्र फ्रोडो बैगिंस। उसे अपने चाचा बिल्बो से एक अंगूठी मिलती है, एक जादुई अंगूठी।
लेकिन ये कोई मामूली जादू नहीं है। गैंडोल्फ, जो एक विजर्ड है, मतलब इस्तारी, जिन्हें मध्य पृथ्वी की मदद के लिए भेजा गया है, वो पहचान लेते हैं।
हाँ, वो समझ जाते हैं कि ये है एक अंगूठी, वो अंगूठी जिसे डार्क लॉर्ड सौरॉन ने माउंट डूम की आग में बनाया था।
अपनी शक्ति और अपनी बुरी इच्छा का एक बड़ा हिस्सा उसमें डालकर, ताकि वो बाकी सब पर राज कर सके।
सही, और यही है कहानी के संघर्ष का केंद्र। सौरॉन, जिसे सबने हारा हुआ मान लिया था, वो मोर्डोर में वापस आ गया है, ताकत जुटा रहा है।
और उसे चाहिए यही एक अंगूठी, अपनी पूरी ताकत वापस पाने के लिए।
और मुसीबत ये है कि इस अंगूठी को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी फितरत ही ऐसी है, ये पहनने वाले को भ्रष्ट कर देती है।
चाहे इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, तो एक ही रास्ता बचता है,
इसे नष्ट करना होगा, और वो भी वहीं जहां ये बनी थी, माउंट डूम की आग में,
जो सौरन के अपने इलाके मोर्डोर के दिल में है। मतलब एक लगभग नामुमकिन काम।
बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी मिलती है फ्रोडो को, किसी योद्धा या राजा को नहीं, एक आम हॉबिट को।
ये टॉल्किन की सोच का एक जरूरी हिस्सा है ना, कि बड़े काम अक्सर छोटे लोग ही करते हैं।
हाँ, फ्रोडो के साथ होते हैं उसका वफादार माली सैमवाइज गैमजी और उसके दोस्त मैरी और पिपिन।
और उनकी यात्रा शुरू होती है शायर से भागकर, क्योंकि सौरॉन के सबसे डरावने सेवक नाज़गुल, वो रिंगरेट्स, उनका पीछा कर रहे हैं।
यहीं से फ्रोडो की अपनी अंदरूनी यात्रा भी शुरू होती है। वो वैसे तो दयालु है, पर अंगूठी का बोझ उसे धीरे धीरे बदलने लगता है।
शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वेदरटॉप पहाड़ी पर वो हमला होता है ना, मॉर्गुल ब्लेड वाला।
हाँ, वो घाव सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, वो एक रूहानी जख्म है जो उसे हमेशा के लिए शैडो वर्ल्ड से जोड़ देता है और कभी पूरी तरह भरता भी नहीं।
ये दिखाता है कि बुराई से लड़ने की कीमत होती है। फ्रोडो की लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने अंदर के लालच और निराशा से भी है।
और इसमें उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है सैम, सैमवाइज गैमजी।
हाँ, सैम, कई लोग तो उसे ही कहानी का असली हीरो मानते हैं।
बिल्कुल, उसकी अटूट वफादारी, उसकी जमीनी समझदारी, उसकी साधारण अच्छाई, वो कमाल है। फ्रोडो के लिए उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
वो सीन याद है माउंट डून पर, जब फ्रोडो हिम्मत हार जाता है?
हाँ, मैं इसे आपके लिए नहीं उठा सकता मिस्टर फ्रोडो, लेकिन मैं आपको उठा सकता हूँ। दोस्ती की मिसाल है वो।
सही कहा। अच्छा, रिवेंडल में फिर फेलोशिप बनती है।
हाँ, एलरॉन की काउंसिल में फैसला होता है कि अंगूठी को मोर्डोर ले जाकर नष्ट करना होगा, और फ्रोडो की मदद के लिए अलग अलग नस्लों के लोग साथ आते हैं।
इंसान होते हैं बुरोमीर, गोंडोर का बहादुर लेकिन थोड़ा कमजोर दिल, और स्ट्राइडर,
जो असल में एरागॉन है, गोंडोर के खोए हुए सिंहासन का वारिस।
फिर एल्व राजकुमार लेगोलास और ड्वार्फ योद्धा गिमली।
जिनकी शुरुआत थोड़ी नोंकझोंक से होती है पर बाद में गहल दोस्ती हो जाती है। ये भी एक खूबसूरत पहलू है कहानी का, नस्लीय दूरियों का मिटना।
और बेशक उनके गाइड गैंडोल्फ।
लेकिन ये साथ ज्यादा देर नहीं टिक पाता। मोरिया की खदानों में वो भयानक वाक्या होता है।
हाँ, बालरॉग वाला, गैंडोल्फ का गिरना, वो फेलोशिप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था।
बिल्कुल। और फिर एमिनहेन पर गुड़गुमेर अंगूठी के लालच में आ जाता है, फ्रोडो पर हमला कर देता है।
तो फ्रोडो समझ जाता है कि अंगूठी का जहर सबको तोड़ देगा। वो अकेले जाने का फैसला करता है
और वफादार सैम उसके पीछे हो लेता है। उसी वक्त उरुखाई का हमला होता है, बोरोमेर मारा जाता है, मेरी और पिपिन पकड़े जाते हैं, फेलोशिप टूट जाती है।
और यहां से कहानी मतलब द टू टावर्स में तीन हिस्सों में चलने लगती है।
हाँ, एक तरफ एरागॉन, लेगोलास और गिमली हैं, वो मेरी और पिपिन को बचाने निकले हैं। ये सफर एरागॉन के लिए खुद को पहचानने और अपनी किस्मत को अपनाने का सफर बन जाता है।
उसे डर है कि कहीं वो अपने पूर्वज इसिल्डूर की तरह नाकाम ना हो जाए, जिसने अंगूठी रखी पर नष्ट नहीं की।
लेकिन धीरे धीरे वो एक राजा के तौर पर उभरता है। रोहान पहुंचकर उनकी मुलाकात गैंडाल्फ से होती है।
गैंडाल्फ द वाइट, वो मरा नहीं था, बालरोग को हराकर और ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटा है।
हाँ, और वो रोहान के राजा थियोडिन ऊत सारुमान के असर से छुड़ाता है। सारुमान जो कभी विजर्ड्स का मुखिया था, अब सौरन से मिल गया है।
सत्ता के लालच में उसका किला आइजनगार्ड एक फैक्ट्री जैसा बन गया है जो प्रकृति को तबाह कर रहा है।
ये प्रकृति बनाम उद्योग वाला थीम टॉल्किन के लिए बहुत जरूरी था, है ना? शायर और लोथलोरियन की खूबसूरती बनाम आइजनगार्ड और मॉर्डोर का विनाश।
बिल्कुल, ये अच्छाई बुराई से भी आगे बढ़कर जीवन और विनाश की लड़ाई है। सारुमान के खिलाफ फिर हेल्म्स डीप की लड़ाई होती है,
एक जबरदस्त लड़ाई।
और उधर मेरी और पिपिन क्या करते हैं?
वो ऑक्स से बच निकलते हैं और फैंगोन जंगल पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है एंट से, वो पेड़ जैसे दिखने वाले पुराने बुद्धिमान जीव।
और उनके लीडर ट्रीबियर्ड से?
हाँ, जब एंट्स को पता चलता है कि सारुमान ने जंगल को कितना नुकसान पहुंचाया है, तो उनका सदियों का धीरज जवाब दे जाता है।
और वो आइजनगार्ड पर चढ़ाई कर देते हैं, उसे तहस नहस कर देते हैं।
ये कमाल का सीन है,
बहुत यादगार। और तीसरी कहानी, सबसे मुश्किल वाली,
फ्रोडो और सैम की, मॉर्डोर की तरफ। अब उनके साथ गॉलम भी है।
गॉलम या स्मीगोल, जिसके पास 500 साल तक वो अंगूठी रही।
हाँ, वो अंगूठी के असर का जीता जागता सबूत है।
हाँ, उसका शरीर, उसका दिमाग सब बिगड़ चुका है, पर्सनालिटी भी बटी हुई है। एक तरफ वो घिनौना बॉलम, दूसरी तरफ थोड़ा सा बचा हुआ स्मीगोल।
वो उनका गाइड बनता है, पर उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, फ्रोडो उसमें अपनी परछाई देखता है, शायद उसे उस पर दया भी आती है।
इसी बीच इथिलियन में उनकी मुलाकात फारामीर से होती है, बोरोमीर के भाई से।
हाँ, और फारामीर अपने भाई के उलग अंगूठी के लालच को ठुकरा देता है। ये दिखाता है कि इंसान चाहे तो बुराई का विरोध कर सकता है।
फिर गॉलम उन्हें सिरित उंगोल के रास्ते ले जाता है और वहां धोखा देता है, शीलॉब।
वो विशाल मकड़ी, वो फ्रोडो को डंक मार देती है, वो लगभग मरी जाता है। लेकिन सैम वहां कमाल की बहादुरी दिखाता है, शीलॉब को घायल करके भगा देता है।
हाँ, और फ्रोडो को मरा समझकर वो अंगूठी उठा लेता है मिशन जारी रखने के लिए। यहीं वो एक साधारण माली से एक नायक बन जाता है। पर फ्रोडो जिंदा होता है, बस ऑक्स उसे पकड़ लेते हैं।
आती है द रिटर्न ऑफ द किंग।
सारी कहानियां अपने अंजाम की तरफ बढ़ती हैं। गोंडोर के शहर मिनास तिरिथ पर सौरॉन का हमला।
डिनथोर, वहां का शासक, उम्मीद खो लेता है, पर गैंडोल्फ हिम्मत नहीं हारते और एरागॉन मृतकों के पद से एक सेना लेकर आता है।
पेलेनोर फील्ड्स की लड़ाई, महाकाव्य की सबसे बड़ी जंगों में से एक।
रोहान की सेना आती है, राजा थियोडेन मारे जाते हैं,
और विच किंग, जिसे कोई मर्द नहीं मार सकता, उसे इओविन, थियोडेन की भतीजी और मेरी मिलकर हराते हैं। वो भविष्यवाणी पूरी होती है।
फिर एरागॉन मृतकों की सेना के साथ आता है और दुश्मन को भड़ा देता है, शहर बच जाता है, पर कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है।
यही है टोल्किन की यू कैटास्ट्रोफी, अचानक मिली जीत जिसमें दुख और नुकसान भी शामिल है। ये कोई आसान जीत नहीं है।
सही कहा। इसके बाद भी पश्चिम के नेता जानते हैं कि असली जीत तो अंगूठी नष्ट करने से ही मिलेगी।
हाँ, तो वो फ्रोडो को वक्त देने के लिए एक चाल चलते हैं। अपनी बची खुची सेना लेकर मॉर्डोर के ब्लैक गेट पर हमला करते हैं, एक तरह से आत्मघाती हमला,
सौरन का ध्यान भटाने के लिए। और मॉर्डोर के अंदर
सैम फ्रोडो को छुड़ा लाता है, और फिर शुरू होती है उनकी आखिरी सबसे दर्दनाक यात्रा, माउंट डूम की चढ़ाई।
मोडोर एकदम बंजर, राख और धुएं से भरी जगह है, और अंगूठी का असर अब अपने चरम पर है।
फ्रोडो लगभग टूट चुका है। सैम की वफादारी ही उसे किसी तरह आगे बढ़ा रही है।
और फिर ज्वालामुखी के बिल्कुल किनारे पर फ्रोडो फेल हो जाता है।
हाँ, इतने संघर्ष के बाद वो कहता है, अंगूठी मेरी है, और उसे पहन लेता है। लगता है सब खत्म।
लेकिन तभी
गॉलुम, जो छिपकर पीछे आ रहा था, वो हमला करता है। फ्रोडो की उंगली काट लेता है अंगूठी के साथ।
और फिर अपने जीत के जोश में वो फिसल कर नीचे आग में गिर जाता है।
अंगूठी के साथ अंगूठी नष्ट हो जाती है। सौरन खत्म।
उसका टावर गिर जाता है, सब खत्म।
ये क्लाइमैक्स बहुत दिलचस्प है। दुनिया किसी हीरो की वजह से नहीं बचती, बल्कि मतलब फ्रोडो की पिछली दया और किस्मत के खेल से।
हाँ, और ये भी कि बुराई अपने ही लालच से नष्ट हो जाती है। इसमें शायद थोड़ा देवी हस्तक्षेप भी है, टॉल्किन के विश्वास के मुताबिक।
युद्ध खत्म होता है, अरागॉन राजा बनता है, शांति आती है, पर कहानी अभी बाकी है।
हाँ, शायर की सफाई।
हॉबिट्स घर लौटते हैं तो देखते हैं कि सारूमान ने वहां कब्जा कर लिया है।
ये हिस्सा जरूरी क्यों लगता है आपको?
मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि युद्ध आपको बदल देता है, और घर लौटना हमेशा आसान नहीं होता, और बुराई कहीं भी पहुंच सकती है, आपको उसका सामना करना पड़ता है। हॉबिट्स अब पहले जैसे नहीं रहे, वो लड़कर अपना घर वापस लेते हैं।
लेकिन फ्रोडो, उसे शांति नहीं मिलती।
नहीं, उसके जख्म बहुत गहरे हैं। वो आखिर में गैंडोल्फ, बिल्बो और एल्स के साथ ग्रे हेवन से पश्चिम की ओर चला जाता है, अमर भूमि। शायद वहां उसे सुकून मिले।
ततर मुख्य उद्देश्यों को समेटे तो शक्ति का भ्रष्ट करने वाला असर, जिसका प्रतीक अंगूठी है।
छोटे और विनम्र लोगों का साहस, दोस्ती और वफादारी, फ्रोडो और सैम, लेगोलास और गिमली।
प्रकृति बनाम मशीनी विनाश, त्याग और नुकसान, और वो युकटास ट्रॉफी वाली कड़वी मीठी जीत।
नियति और इच्छा शक्ति का सवाल भी है। क्या सब पहले से तय था, या किरदारों ने अपनी राह खुद चुनी? शायद दोनों का मेल है।
टॉल्किन का लिखने का अंदाज भी खास है, महाकाव्य जैसा। थोड़ी पुरानी भाषा, गीत और कविताएं।
हाँ, जो दुनिया को और असली बनाते हैं, और किरदारों की भाषा भी अलग अलग है। हॉबिट्स की सीधी बात, एल्व्स की काव्यात्मक शैली।
इसका पढ़ने वाले पर असर कैसा होता है?
ये एक लंबी यात्रा है। आप किरदारों के साथ डरते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, अंत में एक मीठी उदासी सी रह जाती है, एक युग के बीच जाने का एहसास।
पर एक उम्मीद भी रहती है, साधारण चीजों की अहमियत समझ आती है, दोस्ती की ताकत दिखती है।
बिल्कुल। तो ये सिर्फ एडवेंचर की कहानी नहीं है, ये इंसानी या हॉबिट रूह की कहानी है, मुश्किल वक्त में सही चुनाव करने की कहानी है।
और ये याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे वक्त में भी दया और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और सबसे छोटा इंसान भी दुनिया बदल सकता है। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।